इकबाल का चेहरा और सख्त हो गया। जब घर में जवान बेटी होती है, उसने धीमे मगर भारी लहजे में कहा, तो दूसरों को बात करने का मौका नहीं दिया जाता। उसकी बात में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक बाप की चिंता भी छुपी थी। सुल्ताना बेगम चुप हो गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। घर के अंदर खामोशी छा गई, मगर बाहर मोहल्ले की फुसफुसाहटें अभी भी जिंदा थीं, और उस छत पर खड़ा खलील जैसे इस पूरे तूफान का गवाह बना हुआ था। तभी बाहर से अचानक ठक की आवाज़ आई, जैसे किसी ने दीवार के ऊपर कुछ पत्थर जैसा दे मारा हो। आवाज़ इतनी अचानक थी कि सब चौंक गए। इकबाल और सुल्ताना बेगम तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़े, इधर उधर देखने लगे, मगर आसपास कोई साफ नज़र नहीं आ रहा था। बस ऊपर वही आदमी खड़ा था। छत पर खड़ा वो आदमी अब भी नीचे देख रहा था, बिल्कुल बेखौफ, जैसे उसे किसी बात का डर ही ना हो। इकबाल की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। देख रही हो, उसने दबी आवाज़ में सुल्ताना बेगम से कहा, इसने तो जैसे हमारे घर पर कब्जा ही कर लिया है। फिर उसने थोड़ा नरम होकर मगर सख्त लहजे में जोड़ा, प्लीज़ अब और तमाशा मत बनने देना। उसकी आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा थकान और चिंता थी। सुल्ताना बेगम चुप खड़ी रह गई। अब उनमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी दूर नूर सिर झुकाए खड़ी थी, वो सब सुन रही थी, हर बात, हर इल्ज़ाम, हर डर, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ही उसके अंदर के तूफान को बयान कर रही थी। इकबाल ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर उदासी साफ थी। चलो नूर, उसने थोड़ा नरम होकर कहा, तुम अंदर जाओ और अपनी पढ़ाई करो। उसकी आवाज़ में अब एक बाप की चिंता थी, जो हर हाल में अपनी बेटी को इस माहौल से दूर रखना चाहता था। नूर ने धीरे से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, परेशानियां कम होने की जगह और बढ़ रही थी। इकबाल उसी सवाल में उलझा हुआ था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी ऊपर से वो आदमी नीचे उतरता दिखाई दिया। इकबाल के मकान में आधे हिस्से में किराएदार रहते थे और आधे में इकबाल का परिवार। किराएदार वाला कमरा ऊपर था, लेकिन सीढ़ियां दोनों तरफ से नीचे आती थीं। वो आदमी नीचे आया तो इकबाल के सामने आकर खड़ा हो गया। चाचा, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, खलील ने धीरे से कहा। फिर थोड़ी रुककर बोला, हमारे घर में भी माँ बहनें हैं, चाची से कह देना। इकबाल झगड़ा नहीं करना चाहता था। उसने सोचा शायद परेशानी में उसके मुंह से कुछ निकल गया होगा। मैं किसी की बेटी को नहीं देखता, अपनी नौकरी करता हूँ, खलील ने सफाई दी। इकबाल ने सीधा सवाल किया, तो फिर छत पर हर वक्त क्यों खड़े रहते हो? खलील हल्का सा मुस्कुराया, छत पर खड़े रहना ही तो मेरा काम है। उसकी ये बात सुनकर इकबाल थोड़ा असमंजस में पड़ गया, मगर चुप रहा। खलील जाते जाते कह गया, बाजी से कह देना किताबें लेकर पढ़े, कोई मसला नहीं होगा, कोई भी आपके घर की तरफ नहीं देखेगा। वो चला गया और इकबाल उसकी बातों में छिपे मतलब को सोचता रह गया। असल में खलील खुद भी गलतफहमी में था। रेहान ने उसे नूर और घर पर नज़र रखने के लिए रखा था, लेकिन असली वजह उससे छुपाई गई थी। खलील को लगा कि उसे इस घर और उस लड़की की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है। रेदा अरमान के घर आई हुई थी। दोनों हॉल में आमने सामने बैठे थे। अरमान ने नज़रें झुकाते हुए कहा, मैं उस दिन का कारण नहीं बताऊंगा, लेकिन तुमसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहता हूँ। रेदा ने तुरंत उसकी बात पकड़ ली, मगर मैं कारण जानना चाहूंगी, वरना मैं हमेशा उलझन में रहूंगी कि आपने ऐसा क्यों किया। तभी जुबेदा बेगम और माहिरा वहां आ गईं। जुबेदा बेगम ने आते ही माहौल को समझ लिया। उन्हें डर था कि कहीं अरमान कोई पुरानी बात ना खोल दे। उन्होंने जल्दी से बात संभाली और बोली, कह दो ना बेटा कि तुम्हारी माँ थोड़ी शक करती है, इसलिए तुमने ऐसा किया। रिदा को उनकी बात समझ नहीं आई, उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा। जुबेदा बेगम ने बात आगे बढ़ाई, असल में हमारे यहाँ दोस्तों का बेडरूम में जाना अच्छा नहीं समझा जाता, कोई भी दोस्त कमरे में नहीं जाता, और लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं। रेता अब भी उलझी हुई थी, लेकिन मैं तो आपके कहने पर गई थी, उसने धीमे से कहा। जुबेदा बेगम तुरंत बोली, बस वही तो, ये डर गया था, इसे लगा कि कहीं मैं तुम्हें भी गलत ना समझ लूँ, और साथ में इसे ये भी डर था कि मैं इसकी क्लास ना लगा दूँ, इसलिए इसने ऐसा किया। अरमान हल्का सा मुस्कुरा दिया। रेता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तो इसलिए कमरे में गई थी क्योंकि आपने भेजा था। जुबेदा बेगम ने सिर हिलाया, हाँ मैंने ही भेजा था, मगर इसे कहाँ पता था कि तुम्हें मैंने भेजा है, ये तो बेवजह ही डर गया। हॉल में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई और अब रिदा की उलझन धीरे धीरे कम होने लगी थी। असल में इसके डैड तो ज्यादातर घर पर रहते नहीं हैं, जुबेदा बेगम ने नरमी से कहा, वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं, इसलिए मैंने ही बच्चों को थोड़ा सख्ती से पाला है, इसी वजह से इसने ऐसा किया, तुम अरमान को गलत मत समझना। अरमान चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। जुबेदा बेगम आगे बोली, और बच्चों को संभालने के लिए कुछ रूल्स तो बनाने ही पड़ते हैं ना। माहिरा अपनी माँ की बातों पर हल्का सा मुस्कुरा रही थी। आफताब, जो उनके साथ आया हुआ था, चुपचाप सब सुन रहा था। उसे ये सब देखकर अच्छा लग रहा था। उसे लगा कि ये एक सुलझा हुआ और अच्छे उसूलों वाला परिवार है। अपनी बहन के लिए वो हमेशा ऐसे ही घर की चाह रखता था, और आज उसे वो झलक यहाँ दिख रही थी। रिदा अब भी थोड़ा सोच में थी। उसने सीधा सवाल किया, लेकिन आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? उसकी नजर अरमान पर गई, लेकिन जवाब देने से पहले ही जुबेदा बेगम ने बात अपने हाथ में ले ली। हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, एक बार शादी करके तुम इस घर में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें सारे रूल समझा दूंगी। फिर थोड़ी शरारत के साथ जोड़ दिया, समझाऊंगी क्या, रूल्स तो अब तुम्हें ही बनाने होंगे, है ना। रिदा हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके चेहरे की उलझन अब धीरे धीरे कम हो चुकी थी। हॉल का माहौल भी अब पहले जैसा भारी नहीं रहा, सब कुछ एक बार फिर सामान्य होने लगा था। फिर जुबेदा बेगम ने अचानक आफताब की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अगर तुम लोग मंगनी की तारीख नहीं देना चाहते तो मैं आज ही काजी बुला लेती हूँ। आज के आज इन दोनों का निकाह बढ़वा दूंगी और अपनी बहू को यहीं रख लूंगी। उन्होंने प्यार से रिदा की तरफ देखा। अब मुझे जल्दी से मेरी बहू अपने घर में चाहिए। आफताब उनकी बात सुनकर मुस्कुराया, लेकिन उसने नरमी से जवाब दिया, हाँ आंटी, बात तो बिल्कुल सही है, रिदा अब आपकी ही अमानत है, उसे तो आपके घर ही आना है। फिर उसने थोड़ा संभाल कर कहा, लेकिन रेहान को तो आने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग मंगनी तय करेंगे। जुबेदा बेगम ने तुरंत बात पकड़ी, अरे जब रेहान आएगा तब बारात लेकर आ जाना, अभी तो बस रिंग सी पहनानी है, वो तो घर वालों के बीच अभी भी हो सकती है। उनकी आवाज में हल्की सी जल्दबाजी थी। असल में वो किसी का इंतजार नहीं करना चाहती थी। उन्हें डर था कि अभी तो अरमान मान गया है, कहीं बाद में फिर से मना ना कर दे। उनकी नजर एक पल के लिए अरमान पर गई, जैसे वो उसके दिल का हाल पढ़ लेना चाहती हूँ। हॉल में एक बार फिर हल्की सी खामोशी छा गई और हर कोई अपने अपने ख्यालों में खो गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी छोटी सी बात इतना बड़ा रूप ले लेगी, सुल्ताना बेगम ने अफसोस भरे लहजे में कहा। वो किरायेदारनी पर भड़क गई थी और उसी बात ने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया था। हालांकि वो आदमी तो आकर पहले ही इकबाल से बात कर चुका था। इकबाल को उसकी बातें अजीब लगी थी और उसका अंदाज उससे भी ज्यादा अजीब, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था हर बात का जवाब उसी वक्त देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार होता है, खासकर तब जब वक्त और हालात आपके साथ ना हो। इकबाल ने चुप रहना चुना क्योंकि उसे पता था सही वक्त आने पर जवाब देना ही असली समझदारी होती है।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।